بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پویتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9098903506549। दोस्तों, आज शुक्रवार है, दय की 30 और जनवरी की 20 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के छठे महीने जमादिउस्सानी की 27 तारीख है। आज की सभा में के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम पत्र संसार पेश किया जाएगा और आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा विज्ञान की डगर। दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। यूरोपीय संघ के फैसले की राष्ट्रपति रईसी ने की निंदा। तेहरान के इमाम जुमा ने यूरोपीय देशों को दिखाया आईना, मिली हार से बौखलाकर आईआरजीसी को बना रहे हैं निशाना। मस्जिदुल अक्सा पर आतंकी ज़ेयूनियों का हमला, नाच कर की भड़काऊ कार्रवाई। फ्रांस में व्यापक हुआ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। तो श्रोताओं, अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि आईआरजीसी को आतंकवादियों की सूची में डालने का यूरोपीय संघ का काम शैतानी काम है। सैयद इब्राहिम रईसी ने गुरुवार को संसद की विशेष बैठक के दौरान आईआरजीसी के बारे में यूरोपीय संघ के फैसले की निंदा की है। उन्होंने इस बैठक में यूरोपीय संसद द्वारा ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल आईआरजीसी को इस संघ की आतंकवादियों की सूची में डाले जाने और इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध विस्तृत प्रतिबंधों की ओर संकेत किया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि ये काम हताशा में उठाया जाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में विफल रहने के बाद इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के यूरोपीय संघ के फैसले के संदर्भ में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आईआरजीसी इस्लामी गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना का एक भाग है। उन्होंने कहा कि ये काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के विरुद्ध है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहयान भी पहले कह चुके हैं कि ईरान ने हमेशा इस बात पर आग्रह किया है कि आईआरजीसी ईरान का आधिकारिक सैन्य बल है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र और क्षेत्र की सुरक्षा में इस बल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तेहरान के अस्थाई इमाम जुमा ने आईआरजीसी के खिलाफ यूरोपीय संघ की हस्तक्षेपपूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस बात पर बल दिया है कि इस्लामी संरक्षक बल IRGC इस्लामी गणराज्य ईरान का स्तंभ और ताकत का बिंदु है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के अस्थाई इमाम जुमा हुज्जतुल इस्लाम हाज मोहम्मद जवाद अली अकबरी ने जुमे की नमाज के अपने भाषण में IRGC के संबंध में यूरोपीय संसद द्वारा दुश्मनी भरे गैर कानूनी कदम उठाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि IRGC इस्लामी गणराज्य ईरान का एक मजबूत स्तंभ और ताकत का बिंदु है। देश की जनता IRGC से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि इस्लामी व्यवस्था, सरकार और संसद यूरोपीय संसद के हस्तक्षेपपूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण कदम का उचित और निर्णायक जवाब देंगे। इमाम जुमा तेहरान ने कहा कि यूरोपीय संसद की कार्रवाई का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो गौरवपूर्ण IRGC को निशाना बना सके। हुज्जतुल इस्लाम हाज मोहम्मद जवाद अली अकबरी ने इस बात पर बल दिया कि पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में प्रतिरोध के मोर्चे पर IRGC की लामबंदी और अधिकार का विस्तार देख सकते हैं, जहां हजारों जानकार, सक्षम और कुशल तत्व मौजूद हैं और वे दृढ़ता से इस्लामी क्रांति के आदर्शों का पालन करते हैं। आतंकी ज़ायोनियों ने मस्जिदुल अक्सा के बाबुल अमूद पर धावा बोल दिया है। बाबुल अमूद मस्जिदुल अक्सा में प्रवेश करने का सबसे मुख्य द्वार है। अल मयादीन न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी चरमपंथियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर में स्थित मुसलमानों की दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद मस्जिदुल अक्सा के मुख्य प्रवेश द्वार बाबुल अमूद पर अचानक हमला कर दिया। हमलावर आतंकी ज़ायोनी वहां नाचने और अपमानजनक हरकतें करने लगे, जिसके बाद बैतुल मुक़द्दस शहर में रहने वाले मुसलमान मस्जिदुल अक्सा की रक्षा के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन आतंकी इसराइली सैनिकों ने उन्हें मस्जिद में प्रवेश नहीं होने दिया। इस घटना पर कई इस्लामी संगठनों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। प्रतिरोध आंदोलन हमास की ओर से बयान आया है कि मस्जिदुल अक्सा पर हुए हमले की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अवैध ज़ायोनी शासन को चेतावनी देते हैं कि आग से खेलना बंद कर दें। इससे पहले भी फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठनों ने घोषणा की थी कि ज़ायोनियों के हमलों को रोकने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बीच फिलिस्तीनी सूत्रों ने कहा है कि प्रतिरोध के मोर्चे ने गज़ा के तटीय शहर क्षेत्र से एक नया मिज़ाइल परीक्षण किया है। शहाब न्यूज़ ने इस मिज़ाइल परीक्षण की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार इस परीक्षण के दौरान समुद्र की ओर कई मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद ज़ायोनी सेना ने गज़ा के आसपास के सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब में आले सऊद शासन के अत्याचारों के खिलाफ बोलने पर कथित तौर पर अशांति फैलाने के आरोप में एक प्रमुख मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आले सऊद शासन के अत्याचारों की निंदा करने पर इस देश के एक प्रमुख सुन्नी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अदालती दस्तावेज के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने इसकी जानकारी भी दी है। गौरतलब है कि मोहम्मद बिन सलमान के 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बनने के 3 महीने बाद सितंबर 2017 से अब तक दर्जनों प्रमुख मौलवियों और असंतुष्टों को आले सऊद शासन गिरफ्तार कर चुका है और उनमें से कई को मौत की सजा भी दी जा चुकी है। ताज़ा मामला मौलवी औज अलकरनी का सामने आया है, जो सऊदी अरब सरकार का सोशल मीडिया पर विरोध करने के आरोप में जेल में कैद हैं। उन पर मौत की सजा की तलवार लटक रही है। बता दें कि मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर आलोचकों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते रहे हैं। मौलवी करनी के बेटे नासिर अल करनी ने प्रोसिक्यूशन की फाइलिंग को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मौलवी औज अल करनी के लिए मौत की सजा की सिफारिश की है। नासिर अल करनी पिछले साल शरण लेने के लिए ब्रिटेन भाग गए थे। सीरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार अमरीका ने इस देश की छवि को बिगाड़ने के उद्देश्य से लाखों डॉलर खर्च कर डाले। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि इस देश की छवि को खराब करने के लिए अमरीका ने संचार माध्यमों को लाखों डॉलर दिए। इस तरह से अमरीका सीरिया के बारे में विश्व के आम जनमत को धोखा देना चाहता था। बयान के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य सीरिया में अमरीका द्वारा किए गए अपराधों को छिपाना और वहां के पृथकतावादी आतंकी गुटों का समर्थन करना था। इसी संदर्भ में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा था कि अमरीका द्वारा सीरिया से ऊर्जा के स्रोतों की चोरी से इस देश में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है और साथ ही एक मानवीय त्रासदी उत्पन्न हो रही है। फ्रांस में पेंशन सुधार कार्यक्रम के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। लाखों फ्रांसीसी इस देश के राष्ट्रपति की पेंशन सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के चलते गुरुवार को फ्रांस में यातायात बुरी तरह बाधित रहा। एमैनुअल मैक्रॉन की पेंशन सुधार योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जा रही है, जिससे फ्रांसीसी नाराज हैं। नए नियम के अनुसार अब फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्षों से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। इसके विरोध में फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित इस देश में लगभग 200 स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। सरकार की ये दलील है कि फ्रांस में काम करने वालों और रिटायर होने वालों के बीच का अनुपात बहुत तेजी से घटता जा रहा है। इसी विषय की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का फैसला लिया है। लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैनिकों द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। चीन की आधिकारिक मीडिया ने शुक्रवार को ये सूचना दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल लिबरेशन आर्मी PLA मुख्यालय से शिनजियांग सैन कमान के तहत खंजराब में सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया। चीनी राष्ट्रपति ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पीएल के प्रमुख भी हैं। आधिकारिक मीडिया ने दिखाए गए वीडियो के अनुसार शी जिनपिंग ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि किस प्रकार हाल के वर्षों में क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है और किस प्रकार इसने सेना को प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार सैनिकों में से एक ने जवाब दिया कि वे अब 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति ने LAC की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही जवानों से सीमा पर उनकी गश्त और प्रबंधन कार्य के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने सैनिकों की सराहना करते हुए उन्हें अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज के शासनकाल में देश में आतंकवाद बढ़ा है। सन 2022 के दौरान पाकिस्तान में 500 से अधिक आतंकी हमले हुए। इन हमलों में से अधिकांश हमले प्रतिबंधित गुट TTP की ओर से किए गए। शफकनामा समाचार एजेंसी के अनुसार इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार की निर्दयता के कारण देश में अधिक आतंकी घटनाएं घटी। उनका कहना था कि TTP के सदस्यों और उनके परिजनों के बारे में सरकार की कठोरता के कारण पाकिस्तान में आतंकवादियों को मजबूती मिली है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तासीन होने के साथ ही TTP के वे लड़ाके जिनके अपने परिजनों सहित संख्या 40,000 थी, तालिबान की मांग पर पाकिस्तान आ गए। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना ये थी कि अफगानिस्तान से आने वाले लड़कों को कबायली क्षेत्रों में शरण दी जाए, किंतु सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के विरोध के कारण इसको व्यवहारिक नहीं बनाया जा सका। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी फिलिस्तीनियों पर इसराइल को अधिक अत्याचार करने के लिए उकसा रही है? जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी राजदूत ने फिलिस्तीन के विषय पर आयोजित होने वाली राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में यह कहा है कि सन 2022 इसराइल के कब्जे वाले इलाकों के लिए हत्याओं का साल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी राजदूत अमीर सईद ईरवानी का यह कहना था कि फिलिस्तीनियों पर इसराइल के अत्याचार लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का आग्रह करते चले आ रहे हैं कि अगर इसराइल के अपराधों पर विश्व समुदाय ने चुप्पी साधे रखी तो उसे पहले से भी अधिक अत्याचारों और जघन्य अपराधों के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को तुरंत पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन में और ज़ायोनी शासन के अपराधों के खिलाफ आगे आना चाहिए। स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निष्क्रिय प्रदर्शन की वजह से ही ज़ायोनी शासन को अपनी विस्तारवादी और नस्लवादी नीतियाँ जारी रखने का अवसर मिल रहा है। अमेरिका जैसे देश हमेशा ही ज़ायोनी शासन के अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्रवाइयों को रोकने के प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह से इस अवैध शासन के अपराधों को जारी रखने में सुरक्षा परिषद की भूमिका को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। 2022 में इसराइल ने जो अपराध किए हैं उन पर अगर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि इसराइल की पिछली सरकार, जो नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार की सबसे बड़ी आलोचक है, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने में किसी भी तरह से नेतन्याहू की नई सरकार से अलग नहीं थी। जहां तक फिलिस्तीनियों पर ज़ायोनी सरकारों के अत्याचारों का और नस्लवादी नीतियों का संबंध है तो बिना किसी संदेह के ये बात कही जा सकती है कि पिछले 7 दशकों के दौरान इसराइल में कोई भी सरकार रही हो लेकिन फिलिस्तीनियों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सभी की नीति एक जैसी रही। उदाहरण के लिए 2022 में याइर लैपिद की सरकार थी जो एक उदारवादी होने का दावा करते थे। नेतन्याहू की कैबिनेट को वे दक्षिणपंथी और कट्टरवादी करार दे रहे हैं लेकिन इसी दौरान ज़ायोनी सेना और सुरक्षा बलों ने 223 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान ज़ायोनियों ने मस्जिदुल अक्सा पर 250 बार धावा बोला। इस्लामी गणतंत्र ईरान का मानना है कि फिलिस्तीन संकट का एकमात्र समाधान फिलिस्तीन में जनमत संग्रह का आयोजन कराया जाना है। इसी तरह से ईरान का यह भी मानना है कि अवैध ज़ायोनी शासन के साथ किसी भी तरह के संबंध और किसी भी तरह का समझौता फिलिस्तीनियों के अधिकारों के साथ गद्दारी है क्योंकि ये एक आतंकवादी शासन है जो किसी भी समझौते या अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
यूक्रेन युद्ध को 11 माह बीत गए हैं। अब अमेरिका और उसके सहयोगी इस युद्ध में नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जायजा ले रहे हैं रविश जैदी।
गुरुवार को पेंटागन की उप प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि वाशिंगटन क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन का हिस्सा मानता है और इसे वापस लेने के लिए क्यू के अभियान का समर्थन करता है। सिंह का कहना था कि अगर यूक्रेन की सरकार और सेना क्रीमिया को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो हम जब तक भी जंग जारी रहेगी यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि यूक्रेन के लोगों को अधिकार है कि वो अपने देश से तोड़े जाने वाले भाग को फिर से हासिल करें। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन की सेना को ऐसे हथियार देने पर विचार कर रही है जो क्रीमिया प्रायद्वीप तक मार कर सकें। बुधवार को अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकारों के इस सवाल के जवाब में कि क्या वाशिंगटन नहीं चाहता है कि यूक्रेन अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल क्रीमिया में करे, उल्लेख किया कि ये प्रायद्वीप यूक्रेन का अभिन्न अंग है और वाशिंगटन कीव को ऐसे हथियार देने की समीक्षा कर रहा है कि जिनसे इस क्षेत्र को भी निशाना बनाया जा सके। गौरतलब है कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वर्ष 2014 में वहां जनमत संग्रह का आयोजन करवाया था, जिसमें 96% लोगों ने इस क्षेत्र का रूस में विलय करने के पक्ष में वोट किया था। हालांकि यूक्रेन आज भी क्रीमिया को अपना अटूट अंग मानता है और उस पर रूस के नियंत्रण को अवैध कब्जा करार देता है। दूसरी ओर रूस ने क्रीमिया पर यूक्रेन के संभावित हमले को लेकर चेतावनी जारी की है और धमकी दी है कि इस हमले का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये प्रायद्वीप यूक्रेन के अन्य कई क्षेत्रों की तरह ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा है। वाशिंगटन में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने क्रीमिया पर रूस के हमले को लेकर अमरीकी अधिकारियों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमरीकी अधिकारियों का लहजा बहुत ही तीखा और शत्रुतापूर्ण है। अमरीकी अधिकारी ये दावा करके कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, दरअसल कीव को क्रीमिया पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो ये एक आतंकवादी कार्रवाई होगी जिसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इस क्षेत्र में ताजा घटनाक्रमों को देखते हुए आसानी से ये कयास लगाया जा सकता है कि 11 महीने के बाद भी यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की न सिर्फ कोई आशा नजर नहीं आ रही है, बल्कि क्रीमिया को लेकर ये अनिश्चित काल के लिए लंबा खींच सकता है। अमरीका और पश्चिमी देश यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में वृद्धि करते जा रहे हैं। 2023 में बाइडेन प्रशासन ने $40 बिलियन से भी ज्यादा की मदद पर सहमति जता दी है। इससे साफ जाहिर है कि ये देश यूक्रेन युद्ध को रूस के भीतर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जहां वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हासन।
ऑल इंडिया कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर चुके हैं और अंतिम चरण के हवाले से वो कल देर रात गए जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। जम्मू प्रांत के लखनपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। यहां ये बात उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी की यात्रा के हवाले से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव ने कहा है कि राहुल गांधी 27 जनवरी को कश्मीर प्रवेश करेंगे और उनका कश्मीर में भी स्वागत की तैयारियां जारी हैं। जम्मू के जिन क्षेत्रों से उनका गुजर हुआ वहां भी लोगों की एक बड़ी संख्या ने उनका स्वागत किया और उनकी यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर आए हैं। उन्होंने इस वक्त कहा कि उनके जो फैमिली है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती थी और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश शिफ्ट हुई थी और आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब वो अपने आखिरी चरण में कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर पहुंचे, तो उसे लग रहा है कि वो अपने घर आ गए हैं। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया है और ये कहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, परंतु जिस तरह से आम लोग इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं वो देखने के काबिल हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यात्रा के हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि ये समय की बहुत ही अहम जरूरत थी। उन्होंने कहा कि भारत में जिस तरह से नफरतें बढ़ रही हैं उसको मिटाने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है
कि जो नफरतें बढ़ रही हैं उन नफरतों को कम किया जाए। अब कल ही देखिए एक एक को मुसलमान को पकड़ा और उसको मारा।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के तई नफरत फैलाई जा रही है, हमारा ये मानना है कि हमारे देश को एकजुट रखने के लिए इस यात्रा की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। सिप्ट मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप अभी हमारे साथी सैयद मीसम से कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जा रहा है वो है पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश और दीदी मरियम मेहदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे,
और साथ में आप जो है इस वक्त सर्दियों का मजा जरूर ले रहे होंगे, इसलिए कि हम जहां बैठे हुए हैं यानी ईरान की राजधानी तेहरान, तो दीदी को भी इस बात का एहसास है, इसलिए दीदी आज बहुत कुछ कंबल छोड़कर सब कुछ पहन के आई हैं स्टूडियो में।
और बर्फबारी हुई है भाई,
बर्फबारी हुई है काफी। यहां का मौसम जो है वो सुहाना भी है, कुछ लोगों के लिए जो है वो तकलीफ दे भी है। बहरहाल अच्छा मौसम है, उस आशा के साथ कि इस मौसम का आप भी जो है वो लुत्फ उठा रहे होंगे और हम लोग भी यहाँ।
भारत में भी ठंड पड़ी है।
जी जी
जी। और अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ।
बिल्कुल दीदी
जी, तो ईमेल से शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई से अली खान लिखते हैं, एक ज़माना था जब 2003 इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका का साथ अपनी फौज इराक भेजी, जिसमें लाखों इराकी फौजी और नागरिक मारे गए, और आज वो ज़माना है जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है और यूक्रेन अमेरिका और सारी दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है, पर कोई मदद भेजने पर तैयार नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वक्त सबका बदला है, जालिमों जुल्म उतना ही करो जितना तुम सह सको।
बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कही है। और दीदी ये भी है कि जो वक्त है वो पहिए की तरह होता है, कभी कोई ऊपर होता है और कोई नीचे जो होता है वो दबा हुआ होता है, लेकिन बाद में उसका भी वक्त समय आता है और वो ऊपर होता है और जो नीचे यानी ऊपर रहा होगा वो नीचे चला जाता है। ये तमाम देशों ने, आप ये देखिए कि चाहे वो इराक रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, ये तमाम जो देश हैं यहाँ पर जमकर इन्होंने लोगों की हत्याएं की हैं, लोगों का नरसंहार किया है, खून बहाया है, बच्चों का खून बहाया है यमन में, लेकिन पूरी दुनिया खामोश। अब जब इनके ऊपर बात आई है तो इनके जो यानी साथी मवाली हैं वो सब बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसकी सज़ा तो इनको मिलनी है और हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हमारे जो ईरान है वो भी कभी भी किसी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है, हमेशा वार्ता और शांति चाहता है कि कोई भी चीज़ का समाधान वार्ता के जरिए हो, तो ईरान भी यही चाहता है, हमारा भी यही सोचना है कि यानी युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए, जितना हो सके वार्ता के जरिए अपनी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए।
जी, ग्राम महदिया मठ जिला मुजफ्फरपुर से रजनीश कुमार लिखते हैं, रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा के रविश जी और मरियम मेहरदादी जी को नमन सलाम और नमस्कार एवं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल आपके प्रसारण हम नियमित पूर्वक सुन रहे हैं और रेडियो पर 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारण साफ सुनाई दे रहे हैं। शुक्रवार को विश्व समाचार और राजनीतिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार और विज्ञान की डगर का कार्यक्रम काफ़ी रोचक भरा लगा, और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की के बारे में चर्चा की गई, जो मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक भरा लगा। इसके लिए आप सभी को कोटि सह धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी नव वर्ष की जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं और इस आशा के साथ कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय होगा।
तो दोस्तों आप चलते हैं फिर से दीदी मरियम महरदादी के पास और देखते हैं कि उनके सांस्कृतिक पिटारे में आज क्या है।
जी मैं तो आपसे गेस करवाना चाह रही थी लेकिन कोई,
जब आप मुझसे गेस करवाना चाह रही हैं तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आज कुछ खाने पीने की चीज़
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपको पसंद रहता है, आज हम ईरान के पारंपरिक खानों में खानों पर बात कर रहे हैं। तो ये है ईरान में पारंपरिक खानों में भरवा सब्जियाँ, ये बहुत ही प्रचलित है। अलग अलग रंगों की दोलमें या शिमला मिर्चों से तरह तरह की सामग्रियां मिलाकर खाना न सिर्फ रंगीन बनता है बल्कि बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक भी बनता है। भरवा सब्जियां बनाने के लिए शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी और अंगूर के पत्तों का उपयोग किया जाता है। वैसे भारत में भी ये किया जाता है।
बिल्कुल।
अलग अलग डोलमें या भरवा सब्जियां पकाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को खोखला करना पड़ता है और उनकी बनावट को काफ़ी नरम बनाना पड़ता है और इसके लिए कुशलता की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भरवा सब्जियों में जो फीलिंग होता है वो लगभग समान ही होता है। पत्ता गोभी या अंगूर के पत्तों में भरना थोड़ा कुशलता का काम होता है। उसे पर्याप्त रूप से लपेटना पड़ता है ताकि खाना बनाते समय वे अलग या बिखर न जाए। बेल पीपर्स, बैंगन और टमाटर के लिए इस तरह के कौशल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन सब्जियों के अंदर का भाग निकालने के बाद आप आसानी से फिलिंग को अंदर भर सकते हैं। लेकिन ईरान में अंगूरी पत्ती दोलमा ईरानियों में सबसे लोकप्रिय है।
तो ये दीदी बताना ज़रूरी समझेंगे हम अपने श्रोताओं को कि जो शिमला मिर्च होती है उसको यहाँ पर दुलमा कहते हैं, फिलफिली दुलमे।
जी जी।
तो ये जो तमाम हिंदुस्तान में भी अपने भारत में भी इस तरह की काफी यानी प्रचलन है खाने में कि उन तमाम चीजों को अंदर से खोखला कर देते हैं, उसके बाद ये तमाम स्वादिष्ट मसाले और मूंगफली के दाने
या बादाम के अलग अलग तरीके,
मुर्ग में भी आता है, मुर्गे में भी जैसे मुर्ग मुसल्लम, बकरा मुसल्लम, तो इस सब में भी सब पेट खाली करके उसके अंदर तमाम चीजें भर दी जाती हैं और वो जो स्वाद होता है उसका उसकी बात ही अलग होती है।
इसीलिए मैं कह रही थी कि आज जो खाने के बारे में
बिल्कुल
बात
बिल्कुल,
कर रहे हैं,
पानी भी आ गया और हमारी बात ऐसा लगता है कि जो हमारे श्रोता है उनके मुंह में पानी आ गया होगा। अगर आपको ये मजा स्वाद लेना है दुलमे का तो आपको ईरान आना होगा। ईरान आइए, दीदी अपने हाथ से बनाकर आपको ये खिलाएंगी।
अरे वाह।
तो श्रोताओं अब जहाँ हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है तो चल के देखते हैं कि जो हमारी साइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर, तमाम जो ट्विटर पे खबरें होती हैं उनके ऊपर हमारे जो प्रिय श्रोता जो हैं वो अपने कमेंट्स करते हैं। तो दीदी वो पढ़कर बताएंगी कि आज क्या क्या कमेंट्स दीदी ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है।
जी, अश्वेत टीचर की अमरीकी पुलिस के हाथों हत्या, निंदनीय ईरान। इस पर यूसुफ लिखते हैं, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है जिसकी ओर वे दूसरों को इशारा करते रहे हैं, झूठे।
बिल्कुल सही बात कही है यूसुफ जी, यही चीज है जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आप ये देखें कि अगर ईरान में कोई मुजरिम को भी सजा दी जाती है तो ये मानवाधिकार का एक सहारा लेते हैं कथित तौर पर, जबकि वो मानवाधिकार जब एक कातिल है अगर उसको कत्ल के बदले में, यहाँ पर जो कानून है, संविधान है ईरान का, तो एक कातिल को कत्ल के बदले में उसको कत्ल की सजा है, यानी अगर परिवार उसको नहीं छोड़ता है जिस परिवार का व्यक्ति कत्ल किया गया है, अगर वो इजाज़त नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, तो कानून ये कहता है कि उसको फांसी की सजा होगी।
जी।
लेकिन उस मुजरिम का साथ देने के लिए मानवाधिकार का सहारा लेते हैं, लेकिन जहां पर एक इंसान को बिला वजह, बिना किसी जुर्म के मारा जाता है, अगर वो देश जो है अमेरिका होगा, अरूपा यूरोप होगा, पश्चिमी देश होंगे या उनके पिट्ठू देश होंगे, तो वहां पर इस तरह के मानवाधिकार की कोई बात नहीं होती। जिसमें सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरब की है कि जहां पर एक एक दिन में 80-80 लोगों को, जिसमें किशोर नाबालिग बच्चे, उनको भी फांसी दी गई, लेकिन ये तमाम मानवाधिकार के ठेकेदार खामोश बैठे रहे।
जी, फिलिस्तीन इस्लामी जगत का सबसे बड़ा मुद्दा है और रहेगा, तेहरान। इस पर अब्बास बलकास लिखते हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ईरान हर एक की तरफ से ईरान को शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी दुनिया की तरफ से इंसानियत की जीत होगी, स्वतंत्रता प्रबल होगी, फिलिस्तीन जिंदाबाद, नदी से समुद्र तक अमानवीय अत्याचारों का दमन, फिलिस्तीनियों को उनकी संपत्ति वापस मिलेगी, शुक्रिया ईरान।
देखिए, इसमें बहुत ही सही बात एक संक्षेप में बता दें कि ईरान से ये जो पश्चिमी देशों की दुश्मनी है, विशेषकर अमेरिका की जो दुश्मनी है, वो यही है कि जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, ईरानी इस्लामी क्रांति आई, इमाम खुमैनी जब इस क्रांति को लेकर आए, तो ये तमाम क्रांतियों के जो मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये था फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दिलाना। तो ये सबसे बड़ी दुश्मनी ईरान के लिए बन गई है। आज फिलिस्तीन के लिए बोलना, फिलिस्तीनियों के हक के लिए बात करना, फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, ये जो है पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका, क्यों कर इसराइल उसकी नाजायज़ औलाद है, इसलिए वो पूरी तरह से ईरान जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है, इसलिए वो उसका एक अवैध शासन का, आतंकी शासन का समर्थन करते हुए ईरान के खिलाफ अपनी दुश्मनी को निकालते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं दीदी के पास जल्दी से और देखते हैं कि किस हमारे प्रिय श्रोता ने हम तक अपना संदेश भेजा है।
जी, ये है हमारे बहुत ही पुराने श्रोता मनोहर त्रिपाठी। तो चलते हैं, इनके विचार सुनते हैं।
मैं रेडियो तहरान नियमित रूप से वेबसाइट और रेडियो दोनों को सुनता हूँ, इसके कार्यक्रम काफी पसंद आते हैं मुझे। मेरे साथ इस कार्यक्रम को मेरे घर के सारे सदस्य भी सुनते हैं और ईरान के और भारत के संबंध और इतिहास जो हमारा रहा है भारत का ईरान के साथ, उसकी जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके अभिभाषण भी उसमें आते हैं, संपादकीय भी काफी अच्छी लिखी जाती है। और उसके अलावा फारसी सीखें कार्यक्रम भी इस सीखते हैं हम लोग, कुछ कुछ मुझे भी समझ में आता है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो फारसी बहुत ही कम हम लोगों को समझ में आती है और रेडियो के माध्यम से तो बहुत ही कम ही आती है, लेकिन उसका कार्यक्रम है, लोगों को पसंद आता है तो सही है। उसके अलावा आज का इतिहास, मतलब जो कार्यक्रम आता है उसमें आज का इतिहास, आज के दिन का इतिहास, तो वो भी कार्यक्रम मुझे पसंद आता है। इसके अलावा सपनों का ईरान एक कार्यक्रम है, उसमें वो भी मुझे काफी पसंद है क्योंकि जो भी भविष्य की योजनाएं होती है किसी देश की वो काफी मायने रखती है, तो वो भी कार्यक्रम मुझे काफी पसंद है। इसके अलावा एक कहानी का प्रोग्राम भी उसमें आता है, कहानी का वो भी मुझे जाना पसंद है, उसमें कभी कभी इतनी अच्छी कहानियाँ आती हैं जो काफी कुछ हकीकत लगती हैं। यही कुछ हमने देखा है। इसके अलावा उसमें जो समाचार आते हैं वो भी काफी सीधे साधे होते हैं, ना कि जाना घुमावदार होते हैं। ये लगता है कि जो उसके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं वो भी इंटेलिजेंट और जाना प्रभावी है। ये राजनीति के संबंध में जो भी बात है वो तो सभी जगह से हम लोगों के अखबार भी आता है, लेकिन इसमें अधिकतर जो होते हैं ईरान और अमेरिका के संबंध में जो घटनाएं होती है उसकी विषय में जाना मुझे इंटरेस्ट रहता है कि क्या हो रहा है ईरान का और भारत के संबंध में। अभी जो परमाणु रिएक्टर वाली बात हुई थी तो मैं इसको जरूर सुनता था, काफी अच्छा लगा। और वो जो आपकी सूचनाएं थी, जो भी न्यूज थी, वो दूसरे किसी एजेंसी या किसी स्टेशन से काफी जो मुझे हकीकत बताती है। कार्यक्रम तो मुझे सारे पसंद है, लेकिन एक फारसी में जो कार्यक्रम आता है वो मुझे थोड़ा कम पसंद इसलिए है क्योंकि मुझे फारसी एज ए रेडियो में तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, और तो सारे कार्यक्रम उसके पसंद है मुझे।
दीदी मनोहर त्रिपाठी जी ने तो बहुत ही अच्छे विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना बहुत ही दिक्कत के साथ हमारी साइट को भी पर विजिट करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को भी सुनते हैं। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हमारे पास समय नहीं है अब कि हम उसके बारे में बात करें। तो दीदी, अब हमारे पास समय नहीं है, बताइए क्या करें।
जी, समय नहीं है तो फिर खुदाफिजी करते हैं।
खुदाफिजी करते हैं। तो श्रोताओं, अपने भैया यानी रविश जैदी को और दीदी मरियम मैदादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र संसार, और आज की सभा का जो अंतिम कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है वो है विज्ञान की डगर।
विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। तेहरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मट्ठा और हल्दी के अर्क से उपयोगी पेय प्राप्त करने में सफल रहे। हल्दी से प्राप्त करक्यूमिन एक प्राकृतिक बायोएक्टिव पदार्थ है। इस पदार्थ में स्वास्थ्य के लिए बड़े गुण हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर विरोधी, रोगाणुरोधी और विरोधी भड़काऊ गुण, जिनके खाद्य उत्पादों में कई संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं। हालांकि पानी में करक्यूमिन की कम घुलनशीलता के कारण भोजन और फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में इसका उपयोग बहुत कम होता है। इस परियोजना के शोधकर्ता के अनुसार इस अध्ययन में पानी में करक्यूमिन की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए इस मूल्यवान पदार्थ को मट्ठा प्रोटीन से प्राप्त नैनो स्ट्रक्चर के साथ मिश्रित किया गया है। इस कार्यवाही के कारण इसकी घुलनशीलता काफी बढ़ गई है, अर्थात लगभग 1200 गुना बढ़ गई। इसके अलावा चूंकि इस परिसर के उत्पादन कदम खाद्य पेय की स्थिति में किए गए थे, इसलिए इस अध्ययन के परिणामों का उपयोग सीधे करक्यूमिन युक्त उपयोगी पेय के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस शोधकर्ता के अनुसार पिछले अध्ययनों में इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट्स का उपयोग उच्च मात्रा में जटिल और करक्यूमिन की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस शोध में प्रोटीन के उपयोग के अनुसार प्राप्त परिणामों से उच्च प्रोटीन सामग्री वाले पेय का उत्पादन हो सकता है जिसमें करक्यूमिन होता है, लेकिन उनमें अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इसका उपयोग गैर मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिनका सेवन दुनिया भर के मुसलमान कर सकते हैं। इस शोधकर्ता के अनुसार इस परियोजना के परिणामों से वे प्रोटीन का उपयोग बढ़ सकता है जो डेयरी उद्योग में एक उप उत्पाद है। इसके साथ ही इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट्स के उपयोग को कम या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग करक्यूमिन की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में सॉल्वेंट्स और जहरीले यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे हरित प्रक्रिया माना जाता है। इस शोध के परिणाम सन 2019 में फूड हाइड्रोकोलोइड्स पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तरबियत मुदरिस यूनिवर्सिटी और तेहरान के शोधकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में पाए जाने वाले एक प्रकार के हानिकारक शैवाल से प्राप्त राख की सतह को संशोधित करके लिथियम आयन बैटरी में एनोड इलेक्ट्रोड के लिए एक सक्रिय सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ऊर्जा भंडारण उपकरणों में लिथियम आयन बैटरी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार की बैटरियों के मुख्य प्रयोगों में हम पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक कारों का भी उल्लेख कर सकते हैं। लंबी चार्जिंग लाइफ और स्थिरता जैसे कई फायदे होने के बावजूद इन बैटरियों के नुकसान भी हैं। तरबियत मुदरिस विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य के अनुसार समुद्र में हानिकारक शैवाल का उद्भव और वृद्धि समुद्र में तेल प्रदूषकों, कृषि विषाक्त पदार्थों और घरेलू सीवेज के प्रवेश का परिणाम है और प्रदूषकों के प्रवेश के हानिकारक प्रभावों में से एक है। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके बाद जलीय पौधों और जानवरों की मौत होने लगती है। इस हद तक के कैस्पियन सागर के कई क्षेत्र जो हर साल कई पर्यटकों की मेजबानी करते हैं, हानिकारक शैवाल के विकास का केंद्र बन गए हैं। इस शोधकर्ता के अनुसार इस परियोजना में हमने वैज्ञानिक नाम क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के साथ एक प्रकार के हानिकारक शैवाल का उपयोग करके लिथियम आयन बैटरी की दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया। वास्तव में इस परियोजना के परिणामों का उपयोग परेशान करने वाले शैवाल की उपस्थिति से संबंधित पर्यावरणीय समस्या दोनों को हल कर सकता है और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी की दक्षता में भी सुधार कर सकता है। इस परियोजना के शोधकर्ता के अनुसार परियोजना से 2 पेटेंट पंजीकृत किए गए हैं। इस शोध के परिणाम 2017 में पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ईरानी शोधकर्ता 100% प्राकृतिक पौधों के यौगिकों का उपयोग करके सड़ सकने वाले नैनो पेपर टॉवल का उत्पादन करने में सफल रहे। इस परियोजना के प्रबंधक के अनुसार आसपास के वातावरण में रोगजनक एजेंटों को स्वास्थ्य खतरों के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। विभिन्न सतहों पर विभिन्न रोगजनकों और संदूषणों के अस्तित्व के कारण कीटाणु नाशकों की आवश्यकता बहुत ध्यान देने योग्य है। इन सामग्रियों तक निरंतर पहुंच की कमी के कारण जीवाणुरोधी कागज के तौलिये में उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके मौजूदा रोगजनक अणुओं को हाथ की त्वचा से कीटाणुनाशक का उपयोग किए बिना और केवल पानी से हाथ धोकर उन्हें पौधे के नैनो कणों वाले कागज के तौलिये से सुखाना संभव है। इस तरह से उत्पादित पेपर नैपकिन गीले नैपकिन की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं और पौधों के यौगिकों के उपयोग के कारण वे 100% प्राकृतिक होते हैं और पर्यावरण में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। वे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं छोड़ते हैं और सभी शुष्क और गीली परिस्थितियों में अपने गुणों को स्थिर बनाए रखते हैं। इस परियोजना के आयोजक के अनुसार दुनिया में पहली बार सेल्युलोज उत्पादों में इस परियोजना द्वारा चांदी के नैनो कणों के बजाय एक रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में पौधे के नैनो कणों का उपयोग प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक सब्जी उत्पादों के उपभोग के वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण में इस उत्पाद की पूर्ण गिरावट के साथ साथ कम लागत अन्य सेल्युलोज उत्पादों के मुकाबले सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभों में से है। चांदी के नैनो कणों को अक्सर अत्यधिक प्रभावी रोगाणुरोधी कारकों के रूप में पहचाना जाता है जो स्तनधारियों के लिए कोई विषाक्तता पैदा नहीं करते। हालांकि लोकप्रिय धारणा के विपरीत कई अध्ययनों ने माउस लीवर और तंत्रिका कोशिकाओं पर चांदी के नैनो कणों के विषाक्त प्रभाव को दिखाया है। मानव फेफड़े उपकला कोशिकाओं और माउस सिस्टम कोशिकाओं ने दिखाया है और प्राकृतिक में चांदी के नैनो कणों के अविभाजित होने के कारण ये गंभीर चिंता पैदा करता है। इस शोधकर्ता के अनुसार पूरी तरह से पौधे और कार्बनिक नैनो कणों का उपयोग करते हुए उच्च जीवाणुरोधी प्रभाव पर्यावरण में गिरावट उच्च स्थिरता और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रदर्शन को कम किए बिना सहनशीलता ईरान के अंदर सभी कच्चे माल प्राप्त करने की संभावना एक पूर्ण उत्पादन लाइन के निर्माण की संभावना देश के अंदर उच्च क्षमता के साथ उत्पादन लाइन में बहुत कम बदलाव के साथ कागज तौलिया कारखानों में निर्माण की संभावना इस उत्पादों के फायदे में से है। ये पेटेंट डिजाइन नैनो प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था। साथ ही इस योजना को नैनो प्रौद्योगिकी विकास मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और खाद्य एवं औषधि संगठन द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से जीवाणुरोधी और संवेदीकरण अनुमोदन प्राप्त है। ब्राजील में साओ पाउलो विश्वविद्यालय में एक नई वैज्ञानिक उपलब्धि में एक मृत दाता से प्रत्यारोपित गर्भाशय के साथ गर्भावस्था से पैदा हुए पहले बच्चे का जन्म हुआ है। जीवित और स्वस्थ लोगों से गर्भाशय दान मांगना एक मुश्किल काम है और अब तक ये ऑपरेशन 40 से भी कम बार किया गया है। इस ऑपरेशन के कारण 2013 से अब तक 11 बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों के उपयोग से बांझ महिलाओं के गर्भधारण के लिए चयन विकल्पों का विस्तार होता है। हालिया वर्षों में इस प्रक्रिया का 10 बार परीक्षण किया गया है और परिणाम के रूप में कोई जन्म नहीं बताया गया है। हालांकि नए नमूने में गर्भाशय प्राप्त करने वाली एक 32 वर्षीय महिला थी जिसमें गर्भाशय नहीं था, और दाता एक 45 वर्षीय महिला थी जिसकी स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो गई थी। सितंबर 2016 में 10.5 घंटे का प्रतिरोपण ऑपरेशन हुआ और सब कुछ ठीक रहा। इस ऑपरेशन के 5 महीने बाद रोगी के शरीर में असामान्य घटना या अंगों की अस्वीकृति के कोई संकेत नहीं थे। सर्जरी के 7 महीने बाद गर्भ वाले अंडे को मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया गया और वो गर्भवती हो गई। बच्चे का जन्म 35 सप्ताह और 3 दिन के बाद 2.5 किलो वजन के साथ हुआ था। साथ ही इस बच्चे का जन्म सिजेरियन सेक्शन से हुआ था और प्रतिरोपित गर्भाशय को भी मरीज के शरीर से निकाल दिया गया था, और कुछ दिन बाद अगले महीनों के दौरान माँ और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। इस शोध के वरिष्ठ शोधकर्ता के अनुसार इस पद्धति का उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है और शोधकर्ता अपने कार्यों में सुधार कर रहे हैं। इस शोध के परिणाम द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
तो दोस्तों, ये रेडियो तेहरान हिंदी सेवा है और हमारा प्रसारण आप 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगली सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।